एक्सीडेंट के बाद इशिका को होश आ गया था। अभिमन्यु उससे मिलने के लिए गया। डॉक्टर ने यही कहा था कि इशिका की याददाश्त जा सकती है, लेकिन अभिमन्यु ने जब उससे उसका नाम पूछा तो इशिका ने बिल्कुल सही बताया था। वो अपनी यादें नहीं भूली थी। ये जानने के बाद अभिमन्यु के चेहरे पर सुकून के भाव थे, लेकिन अगले ही पल में उसके सुकून की जगह परेशानी ने ले ली थी। इशिका ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था और इस वक्त वो नक्श राजवंश को बुलाने का कह रही थी। नक्श ने इशिका के साथ क्या क्या किया था शायद वो इस बात को भूल चुकी थी, तभी वो उसे पहले की तरह अपना दोस्त समझ रही थी। तुम मजाक कर रही हो ना? मुझे डराने के लिए ऐसा कह रही हो ना? तुम्हें सच में नक्श से बात करनी है? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। वैसे तो मेरे एक दो फ्रेंड और हैं जिन पर मैं यकीन कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें यहाँ नहीं बुला सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मिस्टर नक्श राजवंश को यहाँ बुला दीजिए, इशिका ने शांत लहजे में कहा। अभिमन्यु को अचानक इशिका में वही पुरानी इशिका दिखाई देने लगी, जो कम बोलती थी, जिसे कोई कुछ भी कह दे वो जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती थी। उसके बोलने का लहजा भी बिल्कुल ठंडा था। अभिमन्यु वहाँ सदमे में खड़ा था, तभी केशव और राधिका अंदर आ गए थे। केशव का चेहरा इशिका के लिए अनजान था, लेकिन राधिका को देखते ही वो जल्दी से उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। राधिका जल्दी से इशिका के पास आई और उसे संभालते हुए कहा, लेटी रहो, तुम्हारे पैर में चोट आई है तो फिलहाल तुम खड़ी नहीं हो पाओगी और डॉक्टर ने भी तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। राधिका को देखते ही इशिका ने अपनी नज़रें नीचे कर ली थी। वो धीमी आवाज में बोली, मिसेस सिंघानिया, आप हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? आयशा और मिस्टर सिंघानिया को पता चला कि आप मेरे लिए अस्पताल में आई हैं, अपनी बीमारी के बावजूद मेरी परवाह कर रही हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं ठीक हूँ। इशिका काफ़ी हिचकिचाते हुए बात कर रही थी। राधिका को भी उसकी बातें सुनकर हैरानी हो रही थी। वो उसकी बेटी थी, फिर भी उसे मिसेस सिंघानिया कह रही थी। आयशा, जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, वो उसका नाम ले रही थी। मिस्टर सिंघानिया से इसका मतलब आदर्श से था। उन लोगों ने कैसे मिलकर साजिश की और इतने सालों तक राधिका को उसकी बेटी से दूर रखा, ये बात इशिका कैसे भूल सकती थी। इससे पहले कि राधिका कुछ कहती, अभिमन्यु ने कहा, इशिका, क्या तुम बताओगी कि कौन सा साल चल रहा है? आप मुझे ये क्यों पूछ रहे हो? अभी तो नवंबर 2022 चल रहा है ना? जैसे ही इशिका ने बताया, वो सब अपनी जगह पर सन रह गए थे। इस वक्त तक अभिमन्यु और इशिका की शादी जरूर हो चुकी थी, लेकिन वो दोनों ही अपनी शादी से अनजान थे। उस समय इशिका के सामने नक्श का असली चेहरा भी नहीं आया था। हाँ, वो जानती थी कि नक्श उसे पसंद करता है, पर नक्श ने अपने दिल की बात खुलकर उसके सामने नहीं रखी थी। इशिका राधिका के अपने माँ होने तक के सच को भूल चुकी थी। उसके लिए मालविका उसकी माँ थी और वो अकेले एक किराए के छोटे घर में रहती थी। हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, हो सकता है ये टेम्पररी हो, केशव ने जल्दी से कहा और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया था। केशव उनके सामने बिल्कुल शांत था, लेकिन बाहर आते ही उसने दीवार पर कस के मुक्का मारा। वो गुस्से में धीमी आवाज में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी मुझे भूल गई है? वो उस घटिया इंसान को अपना बाप समझती है जिसने जानबूझकर उसे तकलीफ दी, उसके रियल मॉम डैड से उसे दूर रखा। केशव इस वक्त बहुत लाचार महसूस कर रहा था। पहले भी आदर्श और मालविका की वजह से उसे 23 सालों तक पता तक नहीं चला कि उसकी कोई बेटी भी है। अब जब फिर से ठीक हुआ था तो इशिका उसे भूल गई थी। कुछ ही देर में डॉक्टर की टीम इशिका के रूम में थी, यहाँ तक कि अभिमन्यु ने कुछ एक्सपर्ट्स को बाहर से भी बुलाया था। इशिका के टेस्ट एक बार फिर से किए जा रहे थे। अभिमन्यु, केशव और राधिका के साथ इशिका के रूम के बाहर थे। तीनों के चेहरे पर गहरी परेशानी के भाव थे। तीनों को ही यही डर सता रहा था कि अगर इशिका उन्हें भूल गई तो उनका रिश्ता पहले की तरह अजनबी बन जाएगा। लगभग 1-1.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, घबराइए मत मिस्टर राजवंश, ये टेम्पररी है, थोड़े टाइम में उनकी मेमोरीज वापस आने लगेंगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि उनके दिमाग के नाजुक हिस्से में चोट लगी है। चोट गहरी नहीं है तो रिकवर भी जल्दी हो जाएगी, बस थोड़ा टाइम देना होगा। कितना टाइम डॉक्टर? अभिमन्यु हल्के गुस्से में बोला, वो मुझे अपने पास नहीं आने दे रही है, हम सबके साथ अजनबियों की तरह बर्ताव कर रही है। ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। अगर वो हमें पास ही नहीं आने देगी तो हम कैसे उसका ख्याल रखेंगे और वो कैसे रिकवर होगी? आपकी चिंता जायज़ है मिस्टर राजवंश, हर तरीके से उनके दिमाग को और शरीर को आराम की ज़रूरत है। ऐसे में हम यही सलाह देंगे कि आप मिस्टर नक्श राजवंश को यहाँ बुला लीजिए, जिसका जिक्र वो कर रही हैं। मैंने उनसे बात की, उनके हिसाब से वो ग्रेजुएट स्टूडेंट है और साथ में कुछ पार्ट टाइम जॉब्स करती हैं। हालांकि अभी भी वो खुलकर कुछ बताने में हिचकिचा रही हैं। उनकी रिकवरी के लिए हमें उनके हिसाब से चलना होगा, डॉक्टर ने सलाह दी। अपनी बात कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए थे। अभिमन्यु ने केशव की तरफ देखा और लाचारी से कहा, उसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उससे दूर रहना तक मंजूर है, लेकिन मैं नक्श को उसके करीब कभी नहीं आने दूंगा। अभिमन्यु बिल्कुल ठीक कह रहा है। राधिका ने भी उसकी बात पर सहमति जताई और कहा, अगर नक्श फिर से इशिका के पास आया तो वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। बहुत मुश्किल से उस साइको को मेरी बेटी से दूर किया है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए हमें उसके आसपास के माहौल को उसके हिसाब से बनाना ही होगा। नक्श को बुलाने के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ, पर इशिका के लिए हमें ये करना होगा। डोंट वरी, उसे कैसे कंट्रोल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ, केशव ने कहा। राधिका ने गहरी सांस लेकर कहा, हम इतने लोगों में इशिका सिर्फ मुझे जानती है। उसके हिसाब से मालविका उसकी माँ है, जो आजकल भिखारी के गैंग के कब्जे में है। आदर्श और आयशा इस दुनिया में नहीं रहे, जबकि नक्श को बहुत मुश्किल से हमने उससे दूर भेजा है। किसने सोचा था कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद नक्श जैसे इंसान का सहारा लेना होगा। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग बात कर रहे थे, तभी एक जानी पहचानी सी आवाज उनके कानों में गूंजी। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, अचानक एक आवाज आई।